ओम शांति। 1972 में मैं नागपुर में एमएससी कर रहा था केमिस्ट्री में। उसके पहले मैंने बहुत भक्ति मार्ग किया, चारों धाम किए, जप तप किए, बहुत भक्ति किया। एक ही मेरा संकल्प था कि भगवान इस धरती पर होंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं, इतना ही मेरी इच्छा थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। उसके कारण मैं भक्ति मार्ग से भी दूर हो गया और डेढ़ दो साल थोड़ा नास्तिक सा बन गया था और कुछ आदतें भी मुझे लगी थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझे इस विद्यालय का परिचय दिया। मैंने दो तीन बार तो यहां आने के लिए, विद्यालय में आने के लिए मना किया, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति तीन बार आया, तीन बार मना करने के बाद चौथी बार भी आया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने, उन्होंने जो बातें मुझे सुनाई वो मेरे दिमाग में तो नहीं बैठी। और सात दिन का कोर्स उन्होंने कहा करने के लिए, तो मैं 21 दिन तक सात दिन का कोर्स किया, क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रश्न थे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आध्यात्मिक बहुत पावरफुल और साइंटिफिक भी पावरफुल बैकग्राउंड था, तो इसलिए जो सात दिन का कोर्स करते करते 15 दिन पूरे हो गए तो मुझे ऐसी कुछ दिव्य अनुभूति हुई कि कोई दिव्य शक्ति मेरे पर काम कर रही है। उसके कारण जो मुझे बुरी आदतें थी, शराब सिगरेट कभी कभी पीने की, वो ऑटोमेटिक छूट गई। तो मैंने सोचा यहां कोई शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप आगे करेंगे तो माउंट आबू में परमात्मा के दर्शन आपको हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पूरा ये जो नियम है इनके, एक साल तक मैंने पालन किए और 1973 में पहली बार यहां आया। और जब मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता जिसको सुप्रीम कहते हैं, जिसके ऊपर कोई सत्ता है ही नहीं, उस सत्ता से, उस परमात्मा से मेरा मिलना हुआ। मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और ये परमात्मा मेरा बाप है, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट प्रूफ। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, परमात्मा, इतने ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की उनको भी नहीं मिला, हमको कैसे मिल सकता है। जितने भी आप सभी यहां आए हुए हैं भाई बहने, बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं आप सभी हैं। अपने लिए ताली बजाओ जरा। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये परमात्मा की अवतरण भूमि है। इस स्थान पर आने के लिए कुछ पुण्य कर्मों की पूंजी की आवश्यकता होती है। वो अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको कोई 50 बार भी कहें यहां आने के लिए तो भी आप यहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप सभी के पास वो पूंजी है, इसलिए आप सभी महान आत्माएं परमात्मा के दर तक पहुंच गए हैं। ये आपका बहुत ऊंचा भाग्य है। अभी आपके मन में सवाल उठेगा कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता है, शरीर तो उनको है ही नहीं। तो गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। मैं सर्वशक्तिवान निराकार हूं और एक साधारण वृद्ध तन का मैं आधार लेता हूं और उनके कमल मुख द्वारा मैं ज्ञान देता हूं, लेकिन मूढ़मति लोग मुझे पहचानते नहीं और कहते हैं हे भगवान आप धरती पर आए थे लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि धरती पर सारे संसार का जो मालिक है, नियंता है, सारे संसार को संचालन करने वाली जो परम शक्ति है वो धरती पर आ चुकी है। ये गुड न्यूज आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं अनुभव के आधार से। तो जैसे जैसे आप यहां से जाएंगे अपने स्थान पर और इसका अभ्यास करते रहेंगे और एक वर्ष के बाद यहां जब आप आएंगे तो नीचे हमारा जो बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में आपको परमात्मा से मिलने का गोल्डन चांस मिलेगा अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो आपके जो पुण्य कर्म है उसने तो भगवान के दर पर पहुंचाया, अभी आपको करना क्या है, परमात्मा को पहचानना है, उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, रिलेशन जोड़ना है। वो हमारा बाप है, उससे हमें शक्तियां प्राप्त करनी है, शांति प्रेम पवित्रता के खजाने प्राप्त करने हैं, ये हमें दूसरा काम करना है। मैं ने यहां आने के बाद कुछ एक बातें इस संस्था से सीखी है, वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है खुशनुमा जीवन जीना, मेरा जीवन खुशी से भरपूर हो, और उसके लिए हर संभव वो प्रयास करता है, कुछ भौतिक साधनों को इकट्ठा करता रहता है, और जैसे जैसे भौतिक साधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खुशी का परसेंटेज भी कम होता जाता है। ये अनुभव आपने किया होगा, साधन बढ़ते जाते हैं और खुशी हमारी घटती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थायी खुशी हमें ये भौतिक साधनों से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें जीवन में कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को और आध्यात्मिकता को अपनाना बहुत जरूरी है। उसके बिना परमानेंट हैप्पीनेस जीवन में नहीं अनुभव कर सकते हैं। एक स्लोगन लिखो, बड़ा प्यारा स्लोगन है, आप डायरी अगर आपके पास होगी तो। देखो चेहरा कितना भी सुंदर होगा तो चेहरे की सुंदरता है रूहानी मुस्कुराहट। स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे की सुंदरता रूहानी मुस्कुराहट है और फेस हमारा हमेशा मुस्कुराता रहे उसके लिए आवश्यक है मन हमारा सदा प्रसन्न हो। कहते हैं फेस इज द मिरर ऑफ अवर माइंड, लेकिन हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ। जब ये राजयोग का अभ्यास हम करते हैं तो ये तीनों चोर भागते हैं और मन हमारा प्रसन्न रहता है और चेहरा हमारा खिले हुए फूल की तरह खुशनुमा रहता है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। हम दुनिया में देखते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पास करते हैं तो हमें टेम्पररी स्ट्रेस अनुभव होता है, कुछ बोझ, कुछ टेंशन, कुछ इस प्रकार का डिप्रेशन अनुभव होता है और उस समय हमारे मन में जाने अनजाने नेगेटिव संकल्प चलने लगते हैं। और आपने सोचा होगा हर संकल्प का प्रभाव हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उस पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है 75 trillion बॉडी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट एवर द थॉट्स वी आर क्रिएटिंग इन आवर माइंड ईच एंड एवरी थॉट हैज डीप इंपैक्ट ऑन ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज। तो जब हमारे मन में नकारात्मक संकल्प चलते हैं तो नकारात्मक संकल्पों का प्रभाव हमारे सेल्स पर, बॉडी के टिश्यूज पर नकारात्मक होता है। उस समय एक नुकसान पहुंचाने वाला हार्मोन हमारे शरीर में क्रिएट होता है, उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और उसके कारण हमारे शरीर में जानलेवा बीमारियां जन्म लेने लगती है। हम अचानक ऐसा अनुभव करते मैं तो हेल्दी था और ये बीमारी कहां से आई, अचानक कैसे आ गई। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक बीमारियां है, पहले हमारे मन में जन्म लेती है, बाद में तन में वो ट्रांसफर होती है। अगर हम एक कला सीख लेते हैं, स्थिति सिचुएशन कैसी भी हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो, लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मक चिंतन करने की कला को प्राप्त करते हैं तो सकारात्मक संकल्पों का प्रभाव हमारे शरीर के बॉडी के टिश्यूज पर सकारात्मक होता है और उसके कारण जो भी अलग अलग प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में चलती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये बहुत अच्छी तरह से चलती हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव करते हैं। कहते हैं हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो तन भी हमारा स्वस्थ होता है। तो कहते हैं जैसा हम खाते हैं वैसा हम तंदुरुस्त बनते हैं। शरीर को अगर हम रिच खुराक खिलाते हैं तो शरीर भी हमारा हेल्दी होता है। ऐसे मन को भी अगर हम शक्तिशाली खुराक सकारात्मक संकल्पों के खिलाते हैं तो मन भी हमारा सदा स्वस्थ रहता है, मन खुशनुमा रहता है और जीवन का आनंद हम लेने लगते हैं। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, किसलिए दिया है? हर एक सेकंड को हमने इसको एंजॉय करना है। लेकिन मनुष्य आज अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा है, अपने जीवन को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ये राजयोग का अभ्यास डेली अपने जीवन में करेंगे तो गारंटी है अपने जीवन को सुखदायी अनुभव करते रहेंगे। मुझे याद है मैं मार्च महीने में दिल्ली प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने गया था। द्रौपदी मुर्मू जी से हमारा यूथ विंग का सारा टीम वहां मिलने के लिए गई थी। हमने देखा वहां 340 रूम है प्रेसिडेंट हाउस में, लेकिन प्रेसिडेंट ने एक रूम ऐसा सुंदर अपने मेडिटेशन करने के लिए बनाया और परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए, जिसको मुरली कहते हैं, उसके लिए रूम बनाया। तो भारत के नंबर वन सर्वोच्च नागरिक हर रोज इस राजयोग का अभ्यास करते हैं और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भारत की सेवा सुचारू रूप से करते हैं। एक बार अच्छी तरह से ताली बजाएंगे, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की हैं, इसलिए आपको भी नाज होना चाहिए। हमारे क्षेत्र की प्रेसिडेंट हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करके इस राजयोग का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। मैं 1994 में जर्मनी गया था। वहां 60 फेमस साइंटिस्ट के साथ मिल रहा था फ्रैंकफर्ट में। उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने अपने अनुभव के आधार से उनको कुछ टिप्स बताई, लेकिन प्रवचन के बाद एक साइंटिस्ट सभा में खड़े होकर पूछने लगे, मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, आप दोगे? मैंने कहा बताइए आपका क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है, वर्तमान समय दिन प्रतिदिन इस संसार में आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है एक तरफ, और दूसरे तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन भी गिरता जा रहा है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ रहा है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान होना चाहिए, लेकिन उत्थान के बजाय पतन हो रहा है, इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा इसका कारण बड़ा सीधा है, सिंपल है। किसी भी आध्यात्मिक संस्था में आप जाएंगे, बहुत अच्छी बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी, बहुत एक से एक बढ़कर बातें आपको सुनाएंगे लोग, महान आत्माएं, धर्मात्माएं, पुण्यात्माएं। लेकिन इतना ऊंचा जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। वो धारण करने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक शक्ति की। ज्ञान अर्थात युक्ति, योग अर्थात शक्ति, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो शक्ति का स्रोत केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में उपलब्ध है, निराकार परमात्मा शिव। ये मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है। ताली बजाओ न भाई। शक्ति का स्रोत सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करने वाला स्पिरिचुअल पावर हाउस या आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत इस संस्था में उपलब्ध हैं। इसलिए जो भी यहां आते हैं, अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास अपनाते हैं, अपने जीवन में वो धीरे धीरे उन्नति अनुभव करते हैं, परिवर्तन अनुभव करते हैं, बुराइयों को छोड़ने लगते हैं, विकारों को छोड़ने लगते हैं और दिव्य गुणों को धारण करने लगते हैं। तो जब मैंने इनको ये बताया तो उन्होंने वहां फ्रैंकफर्ट में ईश्वरीय विद्यालय हमारा शाखा थी, वहां वो गए, उन्होंने संतुष्टता मिली। वर्तमान समय आज दुनिया में एक क्रेज बहुत चल रहा है, कौन सा? हर इंसान अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करना चाहता है। मेरी पर्सनालिटी टावरिंग पर्सनालिटी हो, शावरिंग पर्सनालिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, इंस्पायरेबल पर्सनालिटी हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, फिजिकली कितनी भी हैंडसम आपकी पर्सनालिटी हो, लेकिन मैग्नेटिक पर्सनालिटी चुंबकीय व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने की। मुझे एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, मूल्यों के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। जितने मूल्य धारण करते हैं उतना हमारा व्यक्तित्व मूल्यवान बनता है। तो मूल्यों का ज्ञान हम बहुत अच्छी तरह से लोगों को दे सकते हैं, लेकिन मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक शक्ति की। जब किसी मकान की मरम्मत करते हैं, हम पुराने मकान को रिपेयर करते हैं, कलर लगाते हैं, उसको अच्छी तरह से हम साफ करते हैं, घिसते हैं, उस बाद में उसको कलर करते हैं। तो इससे आत्मा को भी अगर मेकअप करना है तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, बदबू है, त्रुटियां है, खामियां है, उसको हमने हटाना होगा और दिव्य गुणों के श्रृंगार से आत्मा को सजाना होगा। और इन दोनों बातों के लिए आवश्यकता है ईश्वरीय शक्ति की, और वो हमें राजयोग के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है, और कोई उसके लिए दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए आचार्य और पंडित में क्या अंतर है? पंडित केवल रटी रटाई बातें बताता है, लोगों को सुनाता है। आचार्य अपने पहले आचरण में लाता है, उसके बाद दूसरों के साथ शेयर करता है, तो उसका प्रभाव सुनने वालों पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए हमें जो भी परमात्मा बातें बताते हैं उसको आचरण में लाना है ना भाई? ये राजयोग का अभ्यास हमें डेली करना जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? मैं 2006 में रशिया गया था, रशिया में 200 युवाओं के साथ मिल रहा था, स्टूडेंट्स थे वो सभी। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर कॉन्सेंट्रेशन पावर, क्योंकि विद्यार्थियों की ये ज्वलंत समस्याएं हैं। एग्जामिनेशन का फियर होता है और कॉन्सेंट्रेशन भी वो नहीं कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। मैंने अपने अनुभव के आधार से कुछ बातें शेयर किया और उन एक बात पर मैं बार बार जोर दे रहा था, कितने भी आप बिजी हो लेकिन आपको हर रोज आधा पौना घंटा राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति
बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट था, खड़ा होकर प्रश्न पूछने के लिए कह रहा था, मेरा प्रश्न है, जवाब चाहिए मुझे। मैंने कहा बताइए। विद्यार्थी ने कहा देखो मेरे पास कोई समस्या नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा है और मुझे एग्जामिनेशन फियर भी नहीं है, मुझे ये राजयोग का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बार बार आप इसका अभ्यास करने के लिए एम्फसाइज कर रहे हैं, मुझे उसका कारण बताइए। मैंने उनको बहुत अच्छा उदाहरण दिया सेलफोन का, मोबाइल का। देखो ये भाई साहब के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, देखो मोबाइल को हर रोज अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए मोबाइल की बैटरी को डेली चार्ज करना जरूरी है, हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल, एक बार भी एक दिन भी अगर आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना भूल जाते हैं तो क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको पहुंचाना है किसके बाद, तो सामने वाले व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना होगा, क्या मैं आपका सेलफोन थोड़े समय के लिए ले सकता हूं, मुझे बहुत जरूरी मैसेज पहुंचाना है घर में। तो बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई, चेहरा भी डिस्चार्ज होगा, चेहरे पर खुशी नहीं होगी। तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल फोन वी नीड टू रिचार्ज द बैटरी ऑफ दैट सेल फोन एवरी डे, एम आई राइट? तो जैसे सेल फोन के बैटरी को डेली चार्ज करना जरूरी है, ऐसे हमारा शरीर भी एक सेल फोन की तरह है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको हम यूज कैसे करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है, हम अपने मन में एक मिनट में 13 से 16 से ऐसे संकल्प क्रिएट करते हैं अपने लिए औरों के लिए, और सारे दिन भर में 24 घंटे में हजारों संकल्प क्रिएट करते हैं। बहुत ऊर्जा आत्मा की हम प्रयोग में लाते हैं, केवल आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है। इनपुट ना होने से क्या होगा, मानसिक बीमारियां होना शुरू होगी, थकावट है, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, ये विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी आप कब तक चलाओगे। तो ऐसे अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना डेली बहुत जरूरी है। जब ये बात मैंने उनको बताई तो उनको ये बहुत अच्छी बात लगी। फिर मास्को में हमारा राजयोग सेंटर का एड्रेस उनको दिया, तो उन्होंने वहां जाकर इसका अभ्यास करना शुरू किया। मेरा प्रैक्टिकल आपको अनुभव बताता हूं, राजयोग के अभ्यास के पहले केवल मैं बीएससी में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, लेकिन एमएससी कर रहा था, तो उस समय इसका अभ्यास मैंने राजयोग का शुरू किया, तो मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, उसके कारण यूनिवर्सिटी में नंबर टॉप किया मैंने इस कंसंट्रेशन पावर के द्वारा। अभी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए उसका मैं सिंपल टेक्निक आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ध्यान किसी का भी कीजिए, ध्यान में एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए उसका सिंपल टेक्निक आपको मैं बता रहा हूं। आप शिव जी का ध्यान करो, हनुमान जी का करो, गणेश जी का करो, किसी का भी करो, आप उनके मूर्ति के सामने बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में बैठे हैं, थोड़े समय आपका ध्यान लगा रहता है, उसके बाद आपका ध्यान टूट जाता है, कहीं और मन चला जाता है, तो टूटा हुआ ध्यान, टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में कैसे प्राप्त करें, उसका टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो आत्मा की दो शक्तियां मन और बुद्धि ये कहलाती है,
मन को कंट्रोल करना ये असंभव है। दुनिया वालों ने के हैंड्स अप किया, मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अरे मन मेरा है और मैं नहीं कंट्रोल कर सकूंगा तो और कौन करेगा? तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन और बुद्धि का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको हमने जानना जरूरी है। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है। बुद्धि ही होल एंड सोल है, मन केवल उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे पूंछ की तरह भागता रहता है। अभी हमने मन को कंट्रोल नहीं करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, बुद्धि को पकड़ना है। लेकिन सबसे पहली बात है मन और बुद्धि ये दोनों शक्तियों में अंतर क्या है ये थोड़ा जानना जरूरी है। मन और बुद्धि हम के तो दे रहे हैं लेकिन कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये थोड़ा सा पिक्चर आपके सामने क्लियर होना जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, आपका रहने का घर कहाँ है? आप जहां से भी आए हैं आपको अपना घर स्पष्ट दिखाई देगा, उसकी तस्वीर दिखाई देगी, यस और नो? ठीक है, दिखाई दे रही है। और दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि घर कैसा है, कुछ दो चार बातें बताइए तो आप बताना शुरू करेंगे। घर बहुत अच्छा है, दो मंजिल का है, नीचे चार रूम है, ऊपर तीन रूम है, जो भी है। तो अभी देखने वाली घर को शक्ति है बुद्धि रूपी नेत्र, जो घर को देख रही है, ये आत्मा की आंख है, वो घर को देख रही है। फिर मन उसके बारे में सोच रहा है, मेरे घर के इतने रूम हैं, इस रूम में ये रखा है, दूसरे रूम में ये रखा है। ये सोचने वाली शक्ति मन है। ये सूक्ष्म अंतर आपको अच्छी तरह से अनुभव करना होगा। उसके बाद जब आप ध्यान में बैठते हैं, आत्मा समझ आपको ध्यान में बैठना है। गणेश जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान, हनुमान जी का कर रहे, जो भी कर रहे हैं, तो बुद्धि रूपी नेत्र को फोकस करना है। बुद्धि से देखना माना, उनसे कनेक्शन जुड़ जाना, तो उनके आप देख रहे तो आपके मन में उनके बारे में संकल्प चलेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, बुद्धि रूपी नेत्र वहां से हट जाएगा तो मन भी उसके पीछे भाग जाएगा। अभी ऐसी पोजीशन में आपको करना क्या है, बुद्धि को चेक करना है और चेंज करना है। चेक करो कहाँ है बुद्धि, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उस पर नहीं है, भटक गया है। चेक इट एंड चेंज इट, उसके लक्ष्य पर आप रख लीजिए। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। ये अभ्यास की बात है, धीरे धीरे अभ्यास आप करते जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी और एक सेकंड में जहां चाहे अपनी बुद्धि को आप लगा सकेंगे। अभी पढ़ाई में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं होती है, उसका कारण क्या है, बुद्धि यहाँ है तो मन कहीं और भाग रहा है, या तो मन यहाँ है बुद्धि और कहीं भाग रहा है, इसलिए जो भी वो पढ़ रहे हैं वो बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने का टेक्निक यही है, दोनों शक्तियां साथ साथ होना जरूरी है। जब दोनों शक्तियां एक साथ काम करना शुरू करेगी तो आपकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी और जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसमें आपको अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। हम हर कार्य जो भी करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। पहली बात तो आपका तन मन खुशी से भरपूर होना चाहिए, और दूसरी बात जो कार्य आपने हाथ में लिया उस पर पूरा ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। मन और बुद्धि आपकी खुशी तब रहेगी, खुशनुमा तब रहेगी, उमंग उत्साह से तब रहेगी जब आप राजों का अभ्यास करेंगे, शक्तियों से खजाने से भरपूर होंगे, तो आपका तन मन बुद्धि से अपना एनर्जी से भरपूर होगा, तो आपकी कार्यक्षमता, कार्य दक्षता और कार्य कुशलता, ये तीनों अच्छी तरह से बढ़ेगी। और उसके कारण जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसमें आपको अच्छी तरह से सफलता मिलेगी, ये गारंटी है। इसलिए हमें राजयोग के अभ्यास को जीवन का अंग बनाना जरूरी है। ये राजयोग, राजयोग बार बार हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाई ये है क्या चीज? आपने अच्छी तरह से सुना है, तीन चार दिन में बहुत कुछ बातें आपने सुनी है, फिर भी मैं थोड़ा सा और उसको क्लियर करना चाहता हूं। इस योग को राजयोग क्यों कहते? ताली बजाएंगे जरा एक बार अच्छी तरह से, थोड़ा सा कभी कभी नींद आती है ना तो सुस्त हो जाते हैं ना, इसलिए ताली बजा रहे हैं। कोई कोई बहने आंखें बंद कर रही थी इसलिए। इसको राजयोग क्यों कहते? पहला कारण है ये सभी योगों का राजा है। आप कहेंगे कैसे? आज तक जितने भी योग सिखाए गए हैं वो किसी धर्मात्मा ने, पुण्यात्मा ने, महात्मा ने सिखाया है, ये राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया है, इसलिए ये सभी योगों का राजा कहलाता है। दूसरी बात, इस राजयोग के अभ्यास से हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनते हैं। वी कैन बिकम द कंट्रोलर एंड रूलर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन, फिजिकल ऑर्गन्स। आप देखो मनुष्य, छोटी सी सिगरेट है इतनी, लेकिन 5-6 फीट के आदमी को गुलाम बनाती है, तो अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा अगर बनना है तो ये राजयोग हमें सिखाता है। राजयोग से शक्तियां मिलती हैं और शक्तियों के कारण हम अपने मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में और अपने अनुशासन में रख सकते हैं। तीसरी बात, इस राजयोग के अभ्यास से राजाई संस्कार, रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार, जेंटल संस्कार आत्मा में धारण कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद किस परिवार में हमने जन्म लेना है ये कोई फिक्स कौन करता है? भगवान भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारे संस्कारों के आधार पर हमारा जन्म ऐसे ही परिवार में होता है जैसे समानता संस्कारों की होती है। बहुत रॉयल संस्कार होंगे तो रॉयल परिवार में ऑटोमेटिक आपका जन्म होगा, साधारण आपके संस्कार होंगे तो साधारण परिवार में ही आपका जन्म होगा। लेकिन इस राजयोग के अभ्यास से बहुत रॉयल संस्कार हम आत्मा में धारण कर सकते हैं। और आपको एक बात मुझे सुनाते हुए हर्ष हो रहा है कि ये रॉयल संस्कार आत्मा में सारे कल्प में धारण करने का केवल एक ही बार चांस मिलता है, अभी संगम युग में जब परमात्मा धरती पर आते हैं। अभी रॉयल संस्कारों को धारण करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहला स्टेप है रॉयल संस्कारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना।
जब हम श्रेष्ठ समान में स्थित रहते हैं तो दूसरी स्टेप है ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में क्रिएट होना। और जैसे संकल्प होते हैं तो तीसरी स्टेप है ऐसे श्रेष्ठ बोल हमारे मुख से निकलना। और चौथी स्टेप है ऐसे श्रेष्ठ कर्म हमारे द्वारा करते रहना। और पांचवी स्टेप है ऐसे रॉयल संस्कार आत्मा में धारण होना। तो कहने का मतलब है राजयोग का अभ्यास करने से हम सदा श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं और बहुत अच्छे रॉयल संस्कारों को धारण करने में सफल होते हैं। अभी देखो एक गुह्य राज आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस राजयोग के अभ्यास से आत्मा का डबल प्रोग्रेस होता है। आत्मा में असीम शक्तियां हरेक आत्मा में समाई होती है। बोलिए आप इस बात को मानते हैं क्या भाई बहने, बताइए, बोलो ना प्लीज। हरेक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। सोई हुई शक्तियां होती हैं, सुसुप्त जो शक्तियां होती हैं उनको हमने जगाना है। और जगाने का काम केवल राजयोग ही करता है। राजयोग के अभ्यास से हम समान में स्थित होते हैं और समान सारी शक्तियों को बाहर लाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना। एक किसान, धान की खेती होती है, वो सवेरे से लेकर शाम तक धान की खेती में हम हल चला रहा है और शाम के समय तक वो मेहनत करता है, एकदम थका हुआ हो जाता है। उसको शाम को अपने घर जाना पड़ता है। घर जाने के लिए थोड़ा सा घना जंगल होता है, वो जंगल को पार करते करते घर जाने लगता है। लेकिन उसके सामने एक घटना घटती है, जब वो धीरे धीरे चल रहा है, थका हारा चल रहा है, अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई देता है। और जब शेर की आंखों से आंखें टकराती हैं, ऐसा बिजली की तरह भागने लगता है जो जिंदगी में कभी नहीं भागा, ऐसे वो भागने लगता है। वो कहां से ऊर्जा आई भाई उसके पास, चलने की ताकत उसमें नहीं थी। सारा दिन हल चलाया, ऊर्जा बिल्कुल डाउन हो गई थी। लेकिन उसने, उस घटना ने उसकी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया और वो तेजी से भागा और शेर से बचाने में सफल भी हुआ। उसके भाग्य से क्या हुआ, शेर थोड़ा बूढ़ा था इसलिए थोड़ा बच गया हो। अगर शेर युवा होता ना, थोड़ा बचना मुश्किल होता। तो कहने का मतलब है सोई हुई शक्तियों को हम एक तरफ जगाते हैं और दूसरे तरफ परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है उन शक्तियों से भी हम स्वयं को भरपूर करते हैं। डबल आत्मा की प्रोग्रेस होती है और बहुत तेजी से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। क्या हुआ, मैं एक बार ओडिशा में गया तो मैं फ्लाइट मेरी थी अहमदाबाद से भुवनेश्वर, ये दीदी के पास ही गया था मैं। तो क्या हुआ, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, लंच भी लेना भूल गया और शाम के समय मैं वहां पहुंच गया सेंटर पर। चेहरा मेरा एकदम डाउन था ऐसा। वो दीदी ने मुझे क्या दालमा खिलाया, पता नहीं क्या बढ़िया बढ़िया खिलवा बाटम खिलाया। जैसे दालमा और वो छाना गजा खाया ना, चेहरा ऐसा हो गया। क्यों, एनर्जी लेवल बहुत डाउन थी और जैसे वो भोजन खिलाया एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई। तो ऐसे योगाभ्यास के बाद में ये एनर्जी लेवल आत्मा की बहुत अच्छी हाई होती है, उसके कारण हमारा जीवन उमंग और उत्साह से भरपूर रहता है।
इसलिए राजयोग का अभ्यास डेली करना जरूरी है, ये उसके पीछे कारण है। हम ठीक है, अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। वॉच, हैंड वॉच, टेबल वॉच, वॉल वॉच को आप जब भी वॉच करेंगे तो पांच चीजें आपको वॉच करना है, WATCH। ये पांच चीजें वॉच करेंगे तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लिखो, W स्टैंड फॉर वर्ड्स। हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं बहुत मधुर हो, शॉर्ट स्वीट एंड स्लोली। महान आत्माओं के बोल महान होते हैं। हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। इसको आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ दादा, हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिला। छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक बार क्या हुआ, राजा, सुबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे पहचान के लिए। तीनों जंगल में गए, पेड़ को घोड़े बांधे उन्होंने रस्सी से ताकि वो कहीं न जाए, और शिकार करने के लिए गए। और तीनों जैसे शिकार करके वापस आए, राजा का घोड़ा वहां से गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। राजा को चिंता लगी, अब मैं कैसे महल में वापस जाऊंगा। तो राजा ने कहा सिपाही को, जाओ भाई मेरा घोड़ा ढूंढ के लाओ, जंगल में कहां गया। तो रस्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था, वो अंधा व्यक्ति को ये सिपाही कहते हैं, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा नहीं भाई, अभी उसको वापस आने में देरी हो रही थी तो सुबेदार को भेजा राजा ने, वो भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो अंधे व्यक्ति को बोला, बाबा जी कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा यहां से, आवाज तो नहीं आई घुंघरे की? उसने कहा नहीं भाई, अभी सुबेदार को वापस आने के लिए देरी हो रही। तो राजा खुद वहां घोड़े को ढूंढने के लिए निकले और अंधा व्यक्ति बैठा था तो उसने कहा, महात्मा जी यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा नहीं राजन। अरे राजन, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपने कैसे मुझे पहचाना कि मैं राजा हूं? कहते आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। मुझ जैसे अंधे व्यक्ति को इतना सम्मान दे रहे, तो इतना बड़ा सम्मान देने वाला व्यक्ति जरूर महान होगा, बड़ा होगा, राजा जैसा होगा। आपके बोल ने ही मुझे आपका परिचय दिलाया। तो कहने का मतलब हमारे बोल ही हमारा परिचय देता है। W फॉर वर्ड्स, A फॉर एक्शन। हर कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, महान हो, प्रेरणा देने वाला हो, साधारण ना हो। T फॉर थॉट्स, हमारे मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं सकारात्मक संकल्प हो, शक्तिशाली संकल्प हो, बहुत महान संकल्पों का प्रवाह हमारे मन में सदा चलते रहे। W80 सी फॉर कूलनेस एंड कैरेक्टर, शीतलता को कभी भी भंग होने नहीं देना है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, गर्म होना एक कमजोर आत्मा की निशानी होती है, लेकिन शीतलता को बनाए रखना, सहनशील होके रहना, ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी होती है। और कैरेक्टर, कोई भी मेरे तरफ ऐसी उंगली नहीं दिखा सकता है, किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से लोग सम्मान की दृष्टि से मुझे देखेंगे। और यच फॉर होलीनेस एंड हैप्पीनेस, होलीनेस एंड हैप्पीनेस, कुछ भी बात हो जाता है मुझे अपनी खुशी को गायब होने नहीं देना है, कोई मेरी महिमा कर रहा है बहुत, मैं खुशी में झूम रहा हूँ, कोई मेरी ग्लानी कर रहा है एकदम चेहरा मुरझा के बैठा हूँ, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ किसी के हाथ की, जैसा चाहे कोई मुझे नचाए, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, मेरा अपना सम्मान है, मेरी अपनी स्थिति है, इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो आप हमेशा खुशनुमा होकर रहेंगे, चीयरफुल फेस आपका रहेगा, तो बहुत अच्छी तरह से खुशी में आप झूमते रहेंगे। तो राजयोग के अभ्यास के लिए इस संस्था में हर रोज अमृत वेले राजयोग का अभ्यास कराया जाता है और उसके बाद प्रातः काल की मुरली सुनाते हैं। तो यह योग और मुरली की पालना बहुत अच्छी तरह से यहाँ संस्था में मिलती हैं। परमात्मा हर रोज हमें क्या करते हैं, योग के द्वारा शक्तियां देते हैं और ज्ञान के द्वारा ज्ञान की खुराक खिलाते हैं और युक्तियां विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए युक्तियां बताते हैं और विजय भाव का वरदान भी हमें देते हैं। बच्चे सारे दिन भर में विजयी बन के रहो, ऐसा वरदान भी हमें वो देते हैं। तो इसलिए हर रोज इस अभ्यास को हमने करते जाना है, फिर आप देखेंगे जीना आपका वन नंबर का हो। जीवन के दो अर्थ हैं, जी प्लस वन, जीना हमारा वन नंबर का हो, और दूसरा अर्थ है जीव प्लस ना, जिसमें जीव ही नहीं है, जान ही नहीं है, खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, ऐसा निष्क्रिय जीवन हमारा ऐसा ना हो। तो इसलिए हम अगर राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से खुशी में झूमते रहेंगे और जीवन का आनंद हम अच्छी तरह से लेते रहेंगे। तो किसी धर्म से ये राजयोग जुड़ा हुआ नहीं है। स्वयं को आत्मा समझना और वह निराकार परमात्मा को याद करना ये कोई भी कर सकता है, इसलिए सभी धर्म वाले इसका अभ्यास करते हैं हर रोज। इस सारे विश्व में विभिन्न धर्म वाले लोग इसका अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनंती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राजयोग का अभ्यास आप जरूर कीजिए। मॉर्निंग आवर्स में अगर आप एक घंटा भी इसका अभ्यास करेंगे तो सारा दिन आपका जीवन बहुत खुशनुमा होगा, उमंग उत्साह से भरपूर होगा, ये गारंटी है ना। इसलिए बहुत इसका लाभ ले रहे हैं। मैं जब 72 में इस ज्ञान में आया उस समय केवल 40,000 परमात्मा के ज्ञान सुनने वाले ये ब्राह्मण बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स भारत में ही थे, केवल भारत में। लेकिन धीरे धीरे 74-75 से विदेश की सेवा शुरू हो गई तो विदेशों में भी 140 देशों में ये फैल गया है और अभी वर्तमान समय 15-20 लाख आत्माएं इसका अभ्यास हर रोज कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि इसका आप जरूर आनंद लीजिए और फिर बाद में आप एक साल के बाद यहाँ परमात्मा से मिलने आएंगे तो वो दिन आपके जीवन में सबसे खुशनुमा दिन होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि परमात्म प्राप्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी बात नहीं है। शरीर हम छोड़ते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं चलता है, केवल दुआओं का खाता, जिसको पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं। तो हम यहाँ राजयोग के द्वारा अनेक आत्माओं की दिल से सेवा करना सीखते हैं, उसके कारण दुआओं का खजाना हम प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग पर बेल के 3 पत्ते बहाते हैं, परमात्मा कहते ये तीन पत्तों को मैं क्या करूं, मुझे तो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते चाहिए, आत्मा रूपी पत्ते जो मन से वाचा से कर्मणा से तन से मन से धन से मुझ पर स्वाहा होते हैं, ऐसे चैतन्य पत्ते चाहिए। इसलिए हमें अभी वर्तमान समय परमात्मा की सेवा में जितना हम तन मन धन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और अपने भाग्य का सितारा और अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमका सकते हैं, क्योंकि सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता ही मेरा बाप बन चुका है। इसलिए जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनी और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में भी अभ्यास भी किया, तो आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत आपके जीवन में खुशनुमा जीवन अनुभव करते जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा समय के लिए खड़े होकर ये करेंगे और फिर 15-20 मिनट परमात्मा का ध्यान बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो सभी खड़े हो जाएंगे प्लीज। भाई जी 2 मिनट कुछ है बजाना है थोड़ा। थैंक यू। सीधा बैठेंगे, सीधा ऐसा, ऐसे बूढ़े की तरह नहीं बैठो, सीधा बैठो, पेट की रीढ़ की हड्डी सीधा हो युवा की तरह, और हम बिल्कुल 15-20 मिनट गायब हो जाएंगे, परमात्मा के ध्यान में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक ब्रोकोटि के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं, मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। शांति का प्रकाश, शांति के प्रकंप चारों ओर फैल रहे हैं, परम शांति की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। यह शरीर तो मुझ आत्मा का वस्त्र है, मुझ आत्मा का वाहन है, व्हीकल है। मेरा इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में ही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में विराजमान हूं। विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर, ब्रह्म तत्व की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, इन पांच तत्व से पार छठे तत्व में ब्रह्म तत्व में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल हिला, सुनहरी लाल हिला, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिवपिता, मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति प्यारे शिव पिता के सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद लूट रही हूं। प्यारे शिव पिता, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम शिव पिता ही है, मेरे दिलाराम शिव पिता ही है। शिव परमात्मा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मुझ आत्मा की एनर्जी लेवल राइज हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां मैं, वहां मेरे शिव पिता, वहां मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य को चमका दिया है, मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को दिव्य नेत्र से देख रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में
तप रहे हो, ज्ञान सूर्य स्नान कर रहे हो। कितना सुखद अनुभव है यह। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महा ज्योति परम ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महा मिलन मंगल मिलन का आनंद लूट रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई आ रही हूँ, और इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुके हों। मज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। यह पांच तत्व से बना हुआ शरीर इन पांच तत्वों में समा रहा है। मेरा मूल अस्तित्व एक चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति।